लघु वासुदेव मननम विचार ये चल रहा है कि चार प्रकार के पुरुषार्थों में अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जिसमें मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा, सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, अर्थात जीवन का प्रयोजन लक्ष्य यदि वह है तो वह है मोक्ष प्राप्त करना। धर्म अर्थ काम तक तो प्रायः सब लोग जाते ही हैं, चाहे अनचाहे दृष्टि से, लेकिन मोक्ष के लिए विशेष रूप से प्रयास किए बिना इसकी प्राप्ति हो नहीं सकती। ये किसी के भरोसे रह करके नहीं प्राप्त किया जा सकता, स्वयं लगना पड़ेगा। आगे इसका सुस्पष्टीकरण होगा। अविद्या अनेक होने के कारण जीव भी अनेक हैं। मोटी बातें पहले ध्यान में रखिए, फिर चलते आगे। कल ये बता दिया कि उस मोक्ष की प्राप्ति होगी ब्रह्म ज्ञान से। मोक्ष है नित्य, इसलिए यह सबसे परम है, श्रेष्ठ है। उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपाय क्या है? तो अध्यारोपापवादाभ्याम ज्ञातव्यस्तत्व निर्णय, अध्यारोप और अपवाद के द्वारा उस ब्रह्म को जानना चाहिए। अर्थात ब्रह्म को जानने का तरीका है अध्यारोप और अपवाद पूर्वक जानने में आसानी होती है। आचार्यों ने इसी व्यवस्था बनाई है। अध्यारोप का मतलब हो गया यथार्थ ज्ञान और अपवाद का मतलब हो गया यथार्थ ज्ञान, सम्यक ज्ञान। वस्तु के अज्ञान से ही अवस्तु का अस्तित्व प्रबल हो जाता है। अर्थात निष्प्रपंच ब्रह्म के ज्ञान न होने से यह जो प्रपंचात्मक जगत हमें सत्य प्रतीत होने लगता है। रस्सी में दिखने वाला सांप ही हमें सत्य लगता है। भय कंपन आदि उसके कार्य भी देखे जाते हैं। बाद में जब पता चला नायम सर्प यमरज्जु, यह सर्प नहीं है, रस्सी है, पुनः उसी रस्सी से, जिस रस्सी को सांप समझकर हम डर गए थे, भाग रहे थे, अब उसी रस्सी से खेलने लगे। अरे इसने तो कितना भयभीत कर दिया था, डरा दिया था। जिस जगत को परमात्मा से अलग करके हमने देखा था, यह जगत परमात्मा स्वरूप ही है, ये ज्ञान जब तक नहीं था तब तक तो ये जगत हमारे लिए भय आदि का कारण बना। और जब जगत को परमात्मा के रूप में देखना शुरू किया, फिर संपूर्णम जगदेव नंदन वनम सर्वेपि कल्पद्रुमः, संपूर्णम जगद एव नंदन वनम, ये सारा जगत कैसा दिख रहा है, नंदन वन है, परमात्मा का स्वरूप है। किससे भागे, कहां जाए, जहां देखूं वहां, अंदर राम बाहर राम, जित देखूं तित राम ही राम। ऐसी दृष्टि जब बन जाती है, फिर उसका किसी चीज में न प्रवृत्ति रह जाती है, न कहीं उसकी निवृत्ति होती है, प्रवृत्ति निवृत्ति से परे हो जाता है। आगे ज्ञान प्राप्त होने के बाद व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, तो आचार्य ने शिष्य को यहां संबोधित करके कहा कि हे तात, जानन अपि अजानन इव तिष्ठ, जानते हुए भी अनजाने की तरह बन के रहो। नहीं तो प्रायः क्या होता है, लोग मजाक में बोलते हैं, भाई जब नया नया कोई मुल्ला बने तो नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह करता है। शुरू शुरू में जब ब्रह्म की बात चले तो बोले बस ब्रह्म के सिवाय तो कुछ है ही नहीं। बात तो सही है, लेकिन पहले उसको अपने अंदर भी उतारने की कोशिश करो, और जब उतर जाता है तो ये बोलना ही बंद हो जाता है। फिर तो उसका मौन है लक्षण ज्ञान का। अध्यारूप और अपवाद के द्वारा उस ब्रह्म का ज्ञान होता है। यहां तक तो कल विचार हुआ था जिसमें कह दिया अयम अध्यारूपो वस्तु अज्ञानाद आगतः। ये अध्यारूप क्यों आता है? वस्तु के अज्ञान होने के कारण। वस्तु मतलब आत्मा, आत्मा के ज्ञान न होने से ही अध्यारूप हो गया किसका? अनात्मा का। रस्सी के ज्ञान न होने से ही अध्यारूप हो गया सर्प का। और ये जो मूल बात है वो तो हमेशा ध्यान में रखना है। आप बोल रही थी ना कि बोलना तो रोज बोलना है कि आत्मा के ऊपर जो आगंतुक दुखों का आरोपण हुआ है तो आत्मा के दुखों का कारण ही है शरीर की प्राप्ति होना। और ये पंक्ति में सोचता आप लोगों ने तो लिखवा दूंगा कभी, अभी तो केवल हिंदी में बोलो। तो आत्मा के दुखों का कारण है शरीर की प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति होती है कर्मों से, कर्म की उत्पत्ति होती है राग आदि से, राग उत्पन्न होते हैं अभिमान से, अभिमान होता है अविवेक से, और अविवेक होता है अज्ञान से। अब इस अज्ञान का ही नाम गिना दिया यहां पर, तद अज्ञानम एव अविद्या, उसी का नाम अविद्या भी है। उसी को तमह, तम भी होते अंधकार, मोह भी उसी का नाम है, मूल प्रकृति भी इसी को बोलते हैं, प्रधान भी कहते हैं, और गुण साम्य, गुणों की समता, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण जब एक समान हो, इसी को अव्यक्त भी बोलते हैं, जो दिखाई न देवे। व्यक्त मतलब प्रकट होना, अव्यक्त मतलब न दिखना, और इसी का नाम है माया। अब इस अज्ञान के बारे में बताने जा रहे हैं। तद अज्ञानम एव अविद्या तमो मोहो मूल प्रकृति प्रधानम गुण साम्यम अव्यक्तम माया च उच्यते। मूल प्रकृति नाम, मूल प्रकृति किसको बोलते हैं? तो कहा शुक्ल रक्त कृष्ण तंतु समुदाय रूप रज्जुवत। जैसे अलग अलग धागा अपने आप में कमजोर होता है, और जब धागा को मिला करके बट दो तो रस्सी बन जाती है, हाँ एकदम मजबूती आ जाती है उसमें, ऐसे मूल प्रकृति रस्सी की तरह है। कैसे यह सबको बांधती है? तो इसमें शुक्ल रक्त और कृष्ण तंतु तीन धागे हैं, सफेद लाल और काले। सत्वगुण सफेद, रजोगुण लाल, तमोगुण कृष्ण काला। इन तीनों धागाओं का जो समुदाय है, जब तीनों को मिलाकर के बट दिया तो ये बन गई रस्सी। और सत्व रजस रजस तमोगुण समुदाय रूपा, ये भी कह सकते हो, इसको बोलते हैं मूल प्रकृति। और अस्याः प्रलयो महासुषुप्तिश्च नाम। ये जो प्रतिदिन हम लोग गहरी नींद में चले जाते हैं ना, एक तो ये सामान्य प्रलय हो गया और एक होता है महाप्रलय। अस्याः प्रलयो महासुषुप्तिश्च नाम। प्रतिदिन दरवाजा खुलता है और समय आने पर अपने आप बंद हो जाता है। सवेरे आंखें खुली, दरवाजा खुल गया, अब ये कब बंद होगा? रात्रि में, दिन में भी हो सकता है, किसी किसी का तो अभी भी हो रहा होगा, कोई जरूरी नहीं दिन में रात में होगा, कब हो जाए पता नहीं चलता। इतना तो जरूर है कि ये है कौन जो रात्रि में हमें नींद में ले जाता है और सवेरे पुनः उठा देता है। तो ये कैवल्य उपनिषद आप पढ़ते होंगे तो उसमें आता है स्वप्ने सजीव सुख दुख भोक्ता, और सुषुप्ति काले सकले विलीने। सुषुप्ति काल में सबके सब क्या होते? विलीन हो गए, ये प्रलय। और पुनश्च जन्मांतर कर्म योगात, जब जब हमारे कर्म योग अर्थात कर्म फलोन्मुखी होते हैं फल देने के लिए, तो वही कर्म हमें जब प्रारब्ध का दरवाजा बंद होता है, आज के दिन में इस व्यक्ति के द्वारा इतना प्रारब्ध भोगा जाएगा। ये सारी व्यवस्था की हुई है पहले से ही। कभी कभी हम लोगों को आश्चर्य होता है कि हमने तो सोचा भी नहीं था कि आज इस व्यक्ति का पाला पड़ेगा। अच्छा मिल गया तो आप अपने ऊपर अपने भाग्य को क्या बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं, आई एम वेरी लकी, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। और समवन मेट अनफॉर्चुनेटली, बड़े दुर्भाग्य से कोई मिल गया, तो बताओ लकी और अनलकी वाली बात है। लेकिन ना तो हम अपने लक में स्वतंत्र हैं और न ही सौभाग्य और दुर्भाग्य, ये तो बस ऐसा ही है। हाँ, बच्चों से एक बार मास्टर ने पूछा, बच्चे बताओ कि दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या अंतर होता है। बच्चे से पूछे ना स्कूल में, उसको सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगता है, तो बोले सबसे ज्यादा प्यारा प्यून लगता है, वो छुट्टी घंटी बजाता है ना, उसको देख के सारे बच्चे खुश होते हैं। और जो मास्टर टीचर टाइट करते हो पढ़ाने में, तो उसको देख के सब चिढ़ते, बोले आ गया ये। तो मास्टर ने पूछा, बच्चा बताओ कि दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या अंतर है। तो बच्चे ने कहा, गुरुजी बता तो दूंगा, आप नाराज तो नहीं होंगे। बोले नहीं, तो उत्तर दोगे तो खुशी होगी, नाराज होने की क्या बात है। बोले जैसे आप हैं किसी तालाब में या नदी में, आप नहाने गए, यदि आप वहीं डूब के मर गए तो ये दुर्घटना हो गई, और यदि बच के आ गए तो दुर्भाग्य हो गया। यही अंतर है दोनों में। मतलब दोनों तरफ से उसने मास्टर के ऊपर ही छोड़ दिया, ये बच के आना नहीं चाहिए, जाए तो दुर्घटना, बच के आ गया तो दुर्भाग्य। प्रारब्ध की बात चल रही है, जो पुनश्च जन्मांतर कर्म योगा, कर्म योग से ही हम लोग फिर आज के ये 3 अगस्त 2017, आज दिन भर में गुरुवार बृहस्पतिवार को, अभी तो सत्संग में ही तो पक्का है कि 7:30 से 8:30 बैठेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता होगा घर से चलना चाह ही रहे थे कि बीच में कोई बाधा आ गई, स्वास्थ्य खराब हो गया, कोई गेस्ट आ गए, किसी का फोन आ गया, कहीं ट्रैफिक में फंस गए, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। प्रतिक्षण जो हम लोग चल रहे हैं ना, क्षणार्धम नहीं बजाना हमी विधाता किम विधास्यति। प्लान तो बड़ा लंबा छोड़ा है हम लोगों का, लेकिन एक क्षण का पता नहीं क्या होगा। चल रहा है, चलती का नाम गाड़ी है। तो ये जो जन्मांतर, जन्म जन्मांतर के किए हुए कर्मों का जो फल कर्मयोग के अनुसार, वह व्यक्ति उठता है और फिर जाके सो जाता है। मूल प्रकृति का कहा, अस्या प्रलयो महासुषुप्तिश्च नाम। अस्याम मूल प्रकृतौ, इस मूल प्रकृति में अनंत कोटि जीवाहा, कितने जीव हैं, अनंत, जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती, और कोटि मतलब करोड़, अनगिनत करोड़ों की संख्या में जीव स्व स्व कर्म वासना भी, अपने अपने किए हुए स्वकर्म, दूसरे के कर्म नहीं, अपने किए हुए कर्मों की वासना के साथ, जतु पिंडे लाह, लाख जो कल उदाहरण दिया था ना, लाख के अंदर जैसे सुवर्ण रेण, वह सोने के कण छोटे छोटे चूर्ण बनाने के बाद जैसे चिपके हुए हो लाह के अंदर, लाख के अंदर, उसी प्रकार से यह जीव अपने अपने किए हुए कर्म की वासनाओं में चिपका होता है। अर्थात सुषुप्ति और जागृत क्या है, जमा हुआ घी और पिघला हुआ घी, इतना ही तो अंतर है। जब रात में सोते हैं तो ये जम गया, और सवेरे उठे तो क्या हो गया, पिघल गया। अब आधा किलो घी है तो पिघलने के बाद भी आधा किलो ही तो रहेगा। लेकिन जो प्रज्ञान घन नाम रखा गया, मांडुक उपनिषद में आता है, नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयतः प्रज्ञम प्रज्ञान घनम सुषुप्ति भूतः, तो ये जो सुषुप्ति अवस्था में एकीभूत होकर के अपने हम समष्टि कारण और व्यष्टि कारण, जिसका नाम आगे आएगा, उसमें लीन होने के कारण उसी का नाम है आनंदमय कोश। तो जब अपने कर्म के वासना में जकड़े हुए अर्थात सुवर्ण रेणु सोने के कण के समान यह जीव भी अपने कर्म वासना रूपी लाख के अंदर जब चिपका हुआ होता है, सृष्टे पूर्वम लीना वर्तन्ते, सृष्टि के पूर्व ये जीव अपने वासना रूपी लाख के अंदर छिपा हुआ रहता है। इसका अनुभव कब होता है सबको? तो कहा अयम अनुभव सकल जनानाम सुषुप्ति अवस्थायाम अस्ति। हम लोग भी जब गहरी नींद में चले जाते हैं ना, तो अभी तो वासना के अनुसार कर्मों में प्रवृत्ति हो रही है, लेकिन सुषुप्ति में कर्म तो नहीं करते, और जगते ही फिर कर्म करने लग जाते हैं, तो वो कौन है? तो वासना जो है ना अंतःकरण में पड़ी रहती है, और वही बार बार हमें कर्म आदि में प्रवृत्त करते हैं। इसका अनुभव सबको सुषुप्ति अवस्था में होता है कि जहां वासना पड़ी रहती है लेकिन कर्म नहीं होते, और जगने पर फिर कर्म करने लग जाते हैं। सा मूल प्रकृति सृष्टि काले, वो जो मूल प्रकृति है सृष्टि का जब प्रारंभ होता है, परिपक्व जीव कर्म वसाद, प्रत्येक जीवों के जो कर्म है परिपक्व होने के बाद फलोन्मुखी होने पर, वही माया जो अविद्या तामसी इति त्रिविधा जाता, तीन प्रकार से प्रकट हो जाती है, अर्थात माया अपने को तीन रूपों में परिणत कर देती है, प्रकट कर देती है। अब वेदांत आप लोग सुने हुए हो, है तो एकदम ये प्रारंभिक बातें सब हैं। वासुदेव यति ने जो ये ग्रंथ लिखा है, एक तरह से प्रकरण ग्रंथ है। वेदांत में सीधे ब्रह्मसूत्र आदि पढ़ोगे और ये सब यदि मालूम नहीं होगा ना, तो कई बार वो बहुत भारी पड़ता है, समझ में नहीं आता है। अब आचार्य लोग तो बड़े विद्वान हैं, उनका दिन रात शास्त्रों का अवलोकन है, उनको लगता है जैसे मैं समझता हूं इसे सब समझते होंगे, लेकिन वो कठिनाई तो होती है। शुरू में ये सब यदि पढ़े हो, एकदम प्रक्रियाबद्ध ध्यान में बैठा लेंगे ना आप, तो आगे जाके वेदांत के जो प्रस्थान त्रयी आदि जो ग्रंथ हैं, उत्कृष्ट प्रकरण ग्रंथ भी है। फिर एक सामान्य प्रकरण ग्रंथ है और एक उत्कृष्ट प्रकरण ग्रंथ है, जिसमें पंचदशी आदि हो जाते हैं। पंचदशी अभी तो स्वाध्याय में चली रही है, उसमें भी ये सब आया है विस्तार से। अभी तो कौन सा प्रकरण चल रहा है? तृप्ति द्वीप प्रकरण। हाँ, ऐसे देखा जाए पंचदशी का हृदय है वो तृप्ति द्वीप, सबसे मुख्य प्रकरण है। अब ईश्वर जीव ये सब जो नाम पड़ जाता है, मूल बात को कभी नहीं छोड़ना कि चार प्रकार के पुरुषार्थों में मोक्ष परम पुरुषार्थ है। मोक्ष की प्राप्ति ब्रह्मात्मिकत्व ज्ञान से होगा, ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, और वह ब्रह्म ज्ञान होता है अध्यारोपापवाद के द्वारा। अध्यारोप में किस तरह से उस आत्मा में अनात्मा रूपी प्रपंच का आरोप हुआ, जो निष्प्रपंच ब्रह्म है वह सप्रपंच कैसे दिखने लगा, जिसमें सांप है ही नहीं उसमें हमें सांप क्यों दिख रहा है, तो कहा अज्ञान के कारण। और उस अज्ञान से कितने सारे अनर्थ परंपराएं प्रारंभ हो गए, इसके लिए अभी ये सब प्रकरण चल रहा बताने जा रहे हैं। अब जो है माया किसका नाम है? तीन गुणों के अनुसार, जैसे विवेक चूड़ामणि में भी आता है, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। हम लोग यहां जितने बैठे हैं, भगवान की माया नहीं है तो और क्या है? कुछ किसी भी रूप में दिखाई दे रहे थे क्या? लेकिन शुक्र और शोणित के संयोग होने से 9 महीने में जब यह शरीर पूरा तैयार होके बाहर निकला, तो प्रायः कोई चीज बनती है तो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, और ये जब पैदा हुआ तो धीरे धीरे बढ़ा, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, फिर गया। इसका मतलब भगवान अपने माया का खेल कितने ढंग से खेल रहे हैं। सीधे 20 साल 25 साल की पैदा करके भेजते तो कितना अच्छा होता, नहीं? कौन ये छोटे छोटे बच्चे को संभालने वाले भी परेशान, बच्चे भी परेशान। लेकिन क्रम यही है, आना ऐसे ही पड़ता है, और ऐसे ही बुढ़ापा जैसे आए तो चलते फिरते बोलते ला भाई माला जपना, आज मैं अपना प्राण छोड़ना चाहता हूं, आराम से कुछ ना हो। लेकिन ये भी नहीं होता है, ना तो आते समय सुखपूर्वक आते हैं, ना जाते समय सुखपूर्वक जाते हैं, और कभी कोई चले भी गए तो लोग बोलते हैं कि अरे अरे वो कैसे चले गए, जाने वाले कितने सुखपूर्वक गए ये तो विचार करो, कुछ कष्ट नहीं हुआ, चलते फिरते चले गए, बड़े भाग्यशाली थे। जन्म हुआ, मां गई खेत में घास काटने, कोई किसान की औरत हो तो देखो वहां कोई सर्जरी नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, बच्चा आराम से निकल आता है। और एक कोई बड़े धनाढ्य घर में बच्चा जन्म ले रहा है, जन्म लेते ही वो अमीर तो होने वाला है, लेकिन मां के गर्भ से निकलते समय उसको बड़ा कष्ट होता है जब उसको डॉक्टर ऑपरेशन करके निकालते हैं। एक आगे जन्म लेकर के गरीब होने वाला है लेकिन जन्म उसका बड़ा अच्छा हुआ है, एक जन्म लेकर के अमीर होने वाला है लेकिन जन्म उसका बड़ा कष्टदायक है। तो इसमें प्रारब्ध ही तो है सबका, नहीं तो अमीर घर में पैदा हो रहा है तो उसको कोई दुख होना ही नहीं चाहिए, आगे वो गरीब ही का दुख झेलेगा, उसको जन्म लेते समय ही दुख होना चाहिए। इससे पता चलता है जन्म मरण आदि को देखकर कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने कर्म अलग अलग हैं। तत्र माया विशुद्ध सत्व प्रधाना, ये याद रखना है। वेदांत के यदि प्रारंभिक बातें आप लोग रखेंगे ध्यान में, सत्व प्रधान तो है ही माया, त्रिगुणात्मिका या परा, उसमें विशुद्ध सत्व प्रधान, शुद्ध सत्व, कोई न रजोगुण की मिलावट है न तमोगुण की मिलावट है, इसलिए इसको बोलते हैं विशुद्ध। शुद्ध में भी बी जोड़ दिया, विशेष रूप से जो शुद्ध हो उसको विशुद्ध बोलते हैं। विशुद्ध सत्व प्रधाना तत्र प्रतिबिंबितम सत्सृष्टि पूर्वम विद्यमानम ब्रह्म चैतन्यम ईश्वर इति उच्यते। उस विशुद्ध सत्व प्रधान में प्रतिबिंबित होने वाला, प्रतिबिंबित का मतलब प्रतिफलित कह सकते हैं, जो प्रतिबिंबित हो रहा है उस विशुद्ध सत्व प्रधान में जो चैतन्य, जो ईश्वर है, सृष्टि के पूर्व, उसी का नाम पड़ गया तस्य अव्याकृतो अंतर्यामी च नाम। उसका नाम क्या पड़ गया? अंतर्यामी, अव्याकृत, और वही जगत की रचना करता है, वही जगत का सृष्टा कहलाता है। कौन? विशुद्ध सत्व प्रधान में प्रतिबिंबित होने वाला जो चैतन्य है, जिसको अंतर्यामी अव्याकृत कहा, वही जगत की रचना करता है, जगत का रचयिता जो है वो। स एव परिपूर्णम ब्रह्म चैतन्यम, और उसी को फिर पूर्ण भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, चैतन्य भी कहते हैं। कब? जब इन प्रकृति आदि से परे हो, माया के संबंध से रहित हो। इसलिए माया विशिष्टो ईश्वर और माया रहितो माया रहितम चैतन्यम, ऐसा कह सकते हैं आप। माया आदि से रहित जो विशुद्ध है, शुद्ध चैतन्य, वो है ब्रह्म परमात्मा। और वही जब माया को अधिकृत करके, पंचदशी में यह श्लोक आता है, माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वर। अच्छा, मोटी बात आप लोग ध्यान में रखना, प्रत्येक जीव अपने अपने अज्ञान का अवभाषक है, व्यष्टि अज्ञान का अवभाषक है जीव, और समष्टि अज्ञान का जो अवभाषक है उसी का नाम है ईश्वर। ये दोनों में भेद होगा। जीव ईश्वर एक ही है, फिर भी उपाधिकृत भेद तो मानना ही पड़ेगा समष्टिगत और व्यष्टिगत को लेकर। और महाप्रलय में जब ईश्वर भी कुछ नहीं करते, जीव भी कुछ नहीं करता, उस समय सब अपने उस आनंद की स्थिति में रहते हैं। तो जगत का जो सृष्टा बना अव्याकृत अंतर्यामी जो ईश्वर कहलाया, विशुद्ध सत्व प्रधान में प्रतिबिंबित होने वाला जो चैतन्य, वही जगत का सृष्टा बनता है। और तद एव ताम तामसी अवच्छिन्नम सत् जगत उपादानम अपि भवति। विशुद्ध सत्व प्रधान में प्रतिफलित प्रतिबिंबित होने पर अव्याकृत नाम पड़ा, अंतर्यामी नाम पड़ा, जो जगत की रचना करता है। लेकिन जगत के रचना करते समय फिर वही तामसी अवच्छिन्नम सत् उस तमो गुण को स्वीकार करके जगत का उपादान कारण भी बन जाता है। जगत को बनाने के लिए उस ईश्वर को सामग्री कहां से लानी पड़ती है, कौन सी सामग्री है? उस पदंताचार्य जी से तो बोलते हैं, जो लोग ऐसी शंका करते होंगे, किम इह किम काय सखलु किम उपायस त्रिभुवनम। श्रावण मास चल रहा है, कितना बढ़िया है, ऐसे तो 12 महीना करना चाहिए, और कम से कम श्रावण महीने में तो जरूर करें। शिव महिमना स्तोत्र पुष्पदंताचार्य जी के द्वारा रचित है, जिसमें शिव जी की महिमा गाई गई है, और उसमें तो पुष्पदंताचार्य जी ने सारी बातें कही, वेदांत की बात भी आ गई इसी में। तो किम यह, उसकी इहा चेष्टा कैसी है? रोटी बनाने वाला आटा लाएगा, गूंदेगा, गोल गोल बनाएगा, चकला बेलना पे डालेगा, फिर रोटी बनती है। तो हम लोग जितने ये बने हैं, क्या ऐसे बने हैं? भगवान ने तो कितना बढ़िया सिस्टम बना दिया, स्त्री और पुरुष वो भी उन्हीं की रचना है, उन्हीं का संयोग हुआ, उसी से हम सब प्रकट होते गए, जन्म लेते गए, उसी में बढ़े, बूढ़े हुए, चले गए, स्वयं कहीं दिख ही नहीं रहे, और काम सब ऑटोमेटिक चल रहा है, सिस्टमेटिक, कहीं भी किसी भी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ये यहां पर उसका समाधान हो जाता है कि जगत का उपादान कारण। उदाहरण देते, यथा उर्ण नाभि सृजते गृहणते च, मकड़ी का उदाहरण आता है। तो तंतु हो उर्ण नाभवत स्व उपाधि प्राधान्येन उपादान कारणम और स्व प्राधान्येन निमित्त कारणम। वह जो ईश्वर जब जगत की रचना करने चलता है, तो स्व उपाधि प्रधानतया, स्वयं की जो अपनी उपाधि की प्रधानता है, उससे तो उपादान कारण बनता है। अर्थात उसकी उपाधि क्या है? तमोगुण को स्वीकार किया। और स्व प्राधान्य क्या हो गया? चैतन्य रूप। उपाधि तो जड़ है, तो उपादान कारण है जड़ और निमित्त कारण है चेतन। ये भी ध्यान में रखना। उपादान कारण और निमित्त कारण का नाम जब जब वेदांत में आता है तो जल्दी जल्दी में हम लोग पढ़ जाते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है। तो स्व उपाधि प्रधानता और स्व प्रधानता, जैसे मरी हुई मकड़ी से जाला बनेगा क्या? तो मकड़ी के अंदर चेतन होना चाहिए। यह है मकड़ी की अपनी प्रधानता, और मकड़ी का जो शरीर है यह है उपाधि की प्रधानता। अब तो समझ में आ गया ना? चैतन्य हो भी, लेकिन कोई उपादान कारण न हो, कोई मकड़ी का शरीर न हो, तभी जाला नहीं बनेगा। लेकिन मकड़ी है लेकिन मरी हुई है, तब भी जाला नहीं बनेगा। तो स्व प्रधानता और स्व उपाधि प्रधानता, तो स्वयं की उपाधि मतलब जब अपना शरीर हो गया प्रधान, तो वो बन गया उपादान कारण। किसके प्रति? जाले के प्रति। आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही है? हाँ, जागते रहना, ऐसी बात छोड़ दोगे, कितने भी भागवत सुनो, रामायण सुनो, जब तक आत्मकल्याण की बात नहीं सुनोगे तब तक उस परम पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होने वाली। थोड़ा सा कठिन भले ही लगता है शुरू में, लेकिन जब यही समझ में आने लगेगा तो इतना आनंद आता है। तो स्व उपाधि प्रधानता अर्थात अपनी उपाधि की प्रधानता और अपनी प्रधानता, एकदम हिंदी में बोले तो यही होगा, अपने ही उपाधि की प्रधानता और अपनी प्रधानता। तो अपनी प्रधानता हो गई मतलब चेतन की प्रधानता, और अपने उपाधि की प्रधानता का मतलब जड़ की प्रधानता। मिट्टी से घड़ा बनता है लेकिन कुम्हार का होना जरूरी है। हां इतना जरूर है कि वहां घड़ा जिस मिट्टी से बना वह मिट्टी कुम्हार से अलग है, लेकिन ये जो जगत जो बना हुआ है ये परमात्मा से अलग नहीं है। ये दोनों में अंतर है। निमित्त कारण उपादान कारण को समझने के लिए दृष्टांत तो ठीक है, लेकिन दृष्टांत में जब घटाएंगे तो कुम्हार घड़ा नहीं बनता, कभी घड़ा को बनाता है और वही मिट्टी के द्वारा बनाता है, स्वयं घड़ा नहीं बनता। लेकिन इस परमात्मा ने अपने आप को ही जगत के रूप में बनाया, तो किसके लिए बनाया होगा? आनंद लेने के लिए तो बनाया है ना। कोई भी अपना घर द्वार बनाता है दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? दुख तो बाद में होता है ना। अरे इतना बड़ा मकान बना लिया, मेंटेन करना बहुत भारी पड़ रहा है, किसने कहा था बनाने के लिए? बनाते समय बहुत मजा आया, तो तृप्ति दी प्रकरण में आता है ना, जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि, उसी में है क्या? ईश्वर की सृष्टि अपनी है और हम जीवों की सृष्टि अपनी है। तो वह ईश्वर इस तरह से पूरे जगत के रूप में अपने आप को व्यक्त करता है। दृष्टांत यही है, तंतु उर्ण नाभवत स्व उपाधि प्राधान्येन उपादान कारणम और स्व प्राधान्येन निमित्त कारणम। अब इसमें शंका उठाते हुए कारण सृष्टि, सृष्टि के प्रति वह कारण किस प्रकार से बनता है? अयम ईश्वरः केन प्रकारेण जगत सृष्टवान इति चेत्। उस ईश्वर के द्वारा इस जगत की रचना कैसे होती है, किस प्रकार से वह इस सृष्टि को बनाता है? उच्यते, उसका उत्तर दिया जा रहा है। कहते हैं पूर्वो उक्ता अविद्या रजः प्रधाना बहु प्रकारा अनंता। उस ईश्वर ने जब जगत को बनाना शुरू किया अपनी प्रधानता से और अपनी उपाधि की प्रधानता से, तो इसमें जो उत्पन्न होने वाले हम लोग थे, बोलते हैं वह जो अविद्या है ना, पहले अविद्या का जो नाम आया था, अविद्या कैसी है? तो रजः प्रधाना, विशुद्ध सत्व प्रधान ईश्वर है और मलिन सत्व प्रधान जीव है। हम लोगों के अंदर भी सात्विकता तो है, लेकिन हमारा सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण से अभिभूत है। खास करके हम जीवों में रजोगुण की प्रधानता है, वहां पर तो केवल विशुद्ध सत्व गुण की प्रधानता है ईश्वर में। इसलिए ईश्वर क्या है? सर्वज्ञ है। और जो जीव है, हमारा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से मलिन हो जाने के कारण, जानते तो हम लोग भी हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं जान पाते, इसलिए हम लोगों का नाम पड़ गया अल्पज्ञ। जानते तो हैं लेकिन थोड़ा जानते हैं। ईश्वर को हम सब के बारे में मालूम है, लेकिन हमको अपने बारे में मालूम तो है, आपके बारे में मालूम नहीं है। दो चार को जानता हूं तो दो चार को नहीं भी जानता हूं, ये समस्या तो जब तक रहेंगे तब तक रहेगी। यदि सर्वज्ञ बनना ही है तो बस यद विज्ञाने न सर्वम विज्ञातम भवती, उस आत्मदेव को जान लो फिर तो काम बनेगा। दुनिया की चीजों को कितने भी हम क्यों न जान लें, हमारी अल्पज्ञता बरकरार रहेगी, उससे हम हट नहीं सकते। तो ये जो रजः प्रधान रजोगुण की प्रधानता होने से हम लोगों के शरीर में हमेशा हलचल बना रहता है ना, हमेशा जब से जन्म लिया जब तक स्मशान घाट नहीं चले जाएंगे ना, तब तक कुलबुल 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 होता ही रहता है, नहीं? ये रजोगुण की प्रधानता है, शांति से नहीं रहना। किसी में और अधिक हो, किसी ने साधना करके माला जप करके अपने आप को थोड़ा शांत किया तो कितना आनंद आता है, और जिसने इसका कभी चेहरा देखा ही नहीं, उदाहरण देते हैं, कई बार बोलते हैं महात्मा लोग आश्रम में दिन भर बैठे बैठे कैसे टाइम पास करते हैं, हम भी देखते हैं थोड़ा रह करके, उसको कहो तू दो घंटा माला जप, दो घंटे की तो बात छोड़ो, दस मिनट भी बैठना पड़ जाए, उतने में कितनी बातें दिमाग में आने लगती है। इन सब बातों को देखकर पता चलता है कि हमारे अंदर रजोगुण की कितनी अधिकता है। पूर्व उक्ता अविद्या रजः प्रधाना बहु प्रकारा, अनेक प्रकार की अविद्या है जो अनंत है, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, और तद अविद्या प्रतिबिंबित चैतन्य, उस रजः प्रधान अविद्या में प्रतिबिंबित होने वाला जो चैतन्य है उसी का नाम पड़ गया है जीव, और वह जीव भी अविद्या अनंत होने के कारण जीव भी क्या है, अनंत है, कोई गिनती नहीं की जा सकती। ये तो हम लोग जब शरीर मिल गया, जन्म ले लिया, तो एक आप पब्लिक की काउंटिंग हो जाती, इतने अरब लोग हो गए, जब गिन रहे होते उसी समय कितने मर गए होते, कितने पैदा हो जाते हैं, वो अभी हमारी गिनती सही हो ही नहीं सकती है, एक अंदाज है व्यवस्था बनाने के लिए। वास्तव में देखा जाए तो यहां कहा तद अविद्या प्रतिबिंबित चैतन्य रूपा, उस अविद्या में प्रतिबिंबित होने वाला जो चैतन्य है, जो जीव नाम से कहा गया, और वह जीव अविद्या के अनंत होने के कारण जीव भी क्या है, अनंत है। अनयोहो जीवेश्वरयोहो व्यष्टि रूपा अविद्या और समष्टि रूपा मूल प्रकृति, जो ये अविद्या है ना, व्यष्टि रूप से इसका नाम पड़ गया अविद्या, जो जीव कहलाता है। अविद्या के वश में हम लोग हैं और ईश्वर के वश में अविद्या है, माया है। हम ईश्वर और जीव में क्या भेद है, ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। ईश्वर माया को अपने हिसाब से चलाता है और हम लोग अविद्या के अनुसार चलते हैं। अविद्या वशगस्तु अन्यस् तद वैचित्र्याद अनेकधा सा कारण शरीरम यस् प्राज्ञस्तत्राभिमानवान्। उस व्यष्टि अविद्या में अभिमान करने वाले हम जितने लोग हैं, समष्टि रूप से, समष्टि का मतलब होता है वन, वन जानते ना, वन का मतलब होता है समूह, उस वन में आम के पेड़, इमली के पेड़ सब हो सकते हैं, और व्यष्टि के रूप में आम इमली नहीं है, इमली आम नहीं है। तो हम लोगों के अंदर जो ये भेद है, व्यष्टिगत भेद तो है और समष्टिगत सब एक है। समष्टिगत हम मनुष्यों का समूह है और व्यष्टिगत प्रत्येक व्यक्ति का अभिमान अलग अलग है। तो जीव ईश्वरयो हो व्यष्टि रूपा अविद्या और समष्टि रूपा मूल प्रकृति, ईश्वर समष्टि अज्ञान का अभिभाषक है और जीव व्यष्टि अज्ञान का अभिभाषक है। इसलिए प्रत्येक जीव को जिसका अपना जो अज्ञान है उसी को नष्ट करना हमारा कर्तव्य है। आपके अज्ञान को हम दूर नहीं कर सकते, हमारा अज्ञान हमसे ही दूर होगा, उसको आप नहीं कर सकते। इसलिए क्रमेण कारण शरीरे, मूल प्रकृति रूपी जो ईश्वर है समष्टि रूप से, वो सबका कारण बनता है, लेकिन हमारे शरीर के प्रति जो कारण बना वो व्यष्टि रूपी अविद्या कारण बना। हम लोगों को जो शरीर मिला है ना, अपने अज्ञान के कारण, इसलिए अज्ञान को कारण शरीर कहा जाता है। कोई शरीर नहीं है वो, लेकिन जब तक अज्ञान है तब तक जन्म लेना ही पड़ेगा, इसलिए अज्ञान को ही शरीर कह दिया। जैसे अभी 13वें अध्याय में आपने सुना तो ज्ञान प्राप्ति के साधन होने से उसको भी ज्ञान ही तो कह दिया, उसे ज्ञान मिलता है, इसलिए वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। वैसे ही अज्ञान जब तक है तब तक शरीर तो रहेगा ही, तो शरीर की प्राप्ति के प्रति कारण होने के कारण इसमें शरीर का उपचार होता है, तो कहा जाता है कारण शरीर। शरीर तो दो ही है मूल रूप से देखा जाए, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। लेकिन सूक्ष्म शरीर तब तक रहेगा जब तक अज्ञान रहेगा, इसलिए अज्ञान को कारण शरीर के रूप में कहा जाता है। तयोः कारण शरीरस्य च अवस्थानम्, उस कारण शरीर के जो अवस्थान है अर्थात अपने अज्ञान में जब हम लीन होते हैं, जिस समय सूक्ष्म और स्थूल शरीर का व्यापार बंद हो जाता है, गहरी नींद में जब हम चले जाते हैं, उसका नाम है सुषुप्ति अवस्था। और तयोः स्वस्व कारण शरीरम्, ईश्वर जो महाप्रलय मूल प्रकृति में लीन होता है अर्थात उसको लेकर के शांत हो जाता है, और जीव भी अपने अविद्या में पड़े होने के कारण गहरी नींद में चला जाता है, उस समय की अवस्था का नाम क्या है? उसी का नाम है आनंदमय कोश। इसका नाम क्या पड़ गया? आनंदमय कोश। अच्छा, हमारी वृत्ति जब फैलती है तब आनंद आता है या वृत्ति समेटते हैं तब आनंद आता है? कपड़ा जो बेचता है ना मालिक, उसको तो आनंद तब आता है जब कपड़े का पेमेंट मिलता है। लेकिन कपड़े की दुकान में जो कपड़ा फैलाने वाले और कर्मचारी है ना, पुरुष आए तो शायद थोड़े खुश भी होते होंगे, जब कोई माता आती होंगी तो समझ जाते होंगे अभी टेंशन आ गई, पूरे कपड़े फैला देगी, लेगी एक भी नहीं, और बाद में उसको फिर उसी तरह से फोल्ड करना होता है। तो उसको फैलाते समय आनंद आता होगा, कितना टेंशन होगा कि अभी फैला रहा हूं बाद में सीमेंटना भी हम ही को है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, हम मनुष्यों की यहीं पर परेशानी होती है। यदि फैलाने से पहले ये सोच ले कि सीमेंटना भी पड़ेगा तो कोई फैलाने की कोशिश ही नहीं करेगा। लेकिन पहले हम लोगों की इच्छा होती है, ये कर लूं, ये जान लूं, और जब सब कर लिया सब जान लिया तो लगता है अब तो प्रेम पूरी अध्यात्म भवन ही जाना ठीक है, कुछ भी नहीं दुनिया में, अब तो कंटाल गए सब व्यवहार करते करते। तो ठीक है, चलो वृत्ति को फैलाओ और बाद में वृत्ति को समेटो। तो जागृत अवस्था में वृत्तियों का फैलाव होने के कारण उस परमात्मा से हम दूर होते कि नजदीक होते हैं? दूर होते हैं। और सुषुप्ति अवस्था में नजदीक होते हैं। नजदीक जाने से इतना आनंद मिलता है, और जब उसकी प्राप्ति ही हो जाएगी तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि हम तो स्वयं ही आनंद स्वरूप हैं। लेकिन अभी वो आनंद आवृत है, उसको अनावृत करना है, इसके ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है। अच्छा, ये कैसे है? प्रमाता को जो ढके, प्रमाता के ज्ञान को जो ढके वह है अज्ञान की आवरण शक्ति, और प्रमेय वस्तु के ज्ञान को जो ढके इसका नाम है विक्षेप शक्ति। याद रहेगा, इतना ध्यान में रखना, बहुत सरल बात है, बार बार आप सुने भी होंगे, लेकिन प्रमेय वस्तु के ज्ञान को जो ढके वो हो गई विक्षेप शक्ति, अज्ञान की दो शक्ति है, और प्रमाता के अपने ज्ञान के जो ढके, हमें अपने ही जो ज्ञान नहीं हो रहा है, इसका नाम है आवरण शक्ति। ये सब अब आगे विचार होने वाला है। तो तयोः स्वस्व कारण शरीरम एव आनंदमय कोशः एवं कारण प्रपंच सृष्टि। इस प्रकार से उस निष्प्रपंच ब्रह्म में अज्ञान के कारण इतना बड़ा प्रपंच जो बन गया, मालूम पड़ा क्यों? क्योंकि अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। मांडुक्यकारिकाकार गौड़पादाचार्य जी तो यही बोलते हैं कि भाई जगत तो हुआ ही नहीं, रस्सी में सांप था कब? वो तो सीधे बोलते हैं जिस समय तुम्हें दिख रहा था उस समय में भी नहीं था। और ये तो हमको भी मालूम पड़ता है, लेकिन कब? जब रस्सी का ज्ञान होता है तब। उससे पहले जब दिख रहा था तब तो था, कितना था, जब उसमें से सांप चला गया होगा तो कुछ तो सांप की परछाई या उसके शरीर का कुछ चिन्ह भी तो होगा उसमें, कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ था ही नहीं तो फिर ये हो गया कैसे? ये जो जगत दिखाई दे रहा है किसके कारण? अज्ञान के कारण। किसका अज्ञान है? जगत का तो ज्ञान हो रहा है, अध्यस्त का ज्ञान हो रहा है, लेकिन अधिष्ठान का ज्ञान नहीं हो रहा है। अध्यस्त जो दिख रहा है ये किसमें दिख रहा है? आरामम अस्य पश्यन्ति। बगीचे को देख करके तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है, लेकिन बगीचा बनाने वाला माली की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। वो कैसा होगा जिसने इसकी सजावट की है? तो जब जगत हमें सुंदर लगता है तो कौन सा भजन गाते हैं ना, वो कितना सुंदर होगा, जिसने इस जगत को सुंदर बनाया तो वो फिर स्वयं कितना सुंदर होगा। हाँ, सोचा होगा यहां समुद्र के किनारे ये प्रेमपुरी अध्यात्म भवन होना चाहिए, इधर बाबुलनाथ मंदिर होना चाहिए, ये पूरे पृथ्वी के ऊपर डेकोरेशन ही तो किया गया है, उसमें निमित्त हम लोग बने हैं, बिल्डर है, एक तरफ तोड़ रहे दूसरी तरफ बना रहे, कहीं पर झुग्गी झोपड़ी की भी सजावट है, कहीं पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की भी सजावट है, कहीं पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कहीं बंजर भूमि पड़ी हुई है, कहीं नदी प्रवाहित हो रही है, कहीं सूखा रेगिस्तान दिख रहा है। ये जो सजावट डेकोरेशन किया गया, भले उसमें हम लोग अपने आप को मानते कि हम लोगों ने बनाया, बिल्डिंग तो हमने बनाई, लेकिन बिल्डिंग बनने से पहले जगह किसने बनाई? तो वो जो डेकोरेटर है वो कैसा होगा, वो कितना सुंदर होगा। तो जगत क्या विचार करने से परमात्मा तक आदमी पहुंच जाता है, इसलिए जगत के विचार करने से पहले अपना विचार करो। जीव जगत ईश्वर के विचार चिंतन करते करते ठेठ परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। इसलिए वेदांत में विचार की प्रधानता है। वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। करोड़ों कर्म किए जाने पर भी उस वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती जब तक विचार न किया जाए, क्योंकि विचारों से ही वस्तु की सिद्धि होती है। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान्, कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः। आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्तिर न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपी। सैकड़ों ब्रह्मा आकर के इकट्ठे हो जाए फिर भी उसको मोक्ष तब तक नहीं मिल सकता जब तक आत्मैक्य बोध न हो जाए। वदन्तु शास्त्राणि, अनेक शास्त्र बोलते रहो, पढ़ते रहो। यजन्तु देवान्, अनेक देवताओं की याजना करो, यजन करो, यज्ञ करो। यजन्तु देवान्, कुर्वन्तु कर्माणि, अनेक कर्मों को करते रहो। भजन्तु देवता, भजन करते रहो। लेकिन आत्मैक्य बोधे न बिना विमुक्ति, बिना आत्मैक्य बोध के मुक्ति नहीं हो सकती। न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेपि। विवेक चूड़ामणि में है ये, आचार्य ने कहा ऐसा। अतः अब सूक्ष्म सृष्टि, कारण सृष्टि में ईश्वर जगत का सृष्टा बना, अपनी प्रधानता से निमित्त कारण बना, उपाधि के प्रधानता से उपादान कारण बना, और वह जीव अविद्या अनेक होने के कारण, रजह प्रधान जो अविद्या अनेक होने के कारण जीव भी अनेक हैं। प्रत्येक जीव अपने अज्ञान का अभिभाषक है, व्यष्टि अज्ञान का, और ईश्वर समष्टि अज्ञान का अभिभाषक है। अब सूक्ष्म सृष्टि के बाद स्थूल सृष्टि आदि का वर्णन आएगा, तो सूक्ष्म सृष्टि कैसे होती है ये सब फिर आगे की प्रक्रिया में बताएंगे। जो बात पहले कह दिया था एक बार और दोहरा देते, फिर बात पूरी करते हैं। आत्मा के दुखों का कारण शरीर, शरीर की प्राप्ति अज्ञान से, कर्म से, कर्म की उत्पत्ति राग से, राग की उत्पत्ति अभिमान से, अभिमान होता है अविवेक से, अविवेक होता है अज्ञान से। इसलिए अनर्थों का कारण है अज्ञान, इस अज्ञान को हटाएंगे तभी जाके बात बनेगी। हरिओम।